बहुत बहुत धन्यवाद शबनम जी, माला जी बहुत बहुत धन्यवाद। कल की चर्चा साधु चलो शुरू की थी, रावण के उपदेश से आज पुनः धुराई जा रही है आपकी सेवा में। लक्ष्मण, प्रत्येक प्राणी की प्रत्येक इच्छा की पूर्ति प्रभु राम के अधीन है। रावण जिसने जिंदगी भर राम की कोई बात नहीं मानी, आज अंत समय लक्ष्मण को उपदेश दे रहे हैं, मानो हम सबको उपदेश दे रहे हैं। कहते हैं लखन, प्रत्येक प्राणी की प्रत्येक इच्छा की पूर्ति राम जी के अधीन, जो कुछ वह चाहते हैं वही होके रहता है। अतएव बुद्धिमता इसी में है, हम अपने आप को उनकी परम इच्छा का निमित्त मान के निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म करते रहे तथा इस प्रकार की बुद्धि परमेश्वर से मांगे, बल परमेश्वर से मांगे कि हम उनकी परम इच्छा के अनुसार राम राम जपते हुए जीवन यापन कर सकें। कितना सुंदर उपदेश, सदा पल्ले बांधने वाला। हर एक को इस उपदेश पर चिंतन मनन ही नहीं, इसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। कल की ही चर्चा में साधकों आप जिसे अर्ज की जा रही थी, रामेच्छा ही सर्वोपरि है, सब कुछ परमात्मा की इच्छा के अनुसार हो रहा है। जिसकी समझ में ये बात आ जाती है उसका जीवन शांत आनंदमय जीवन हो जाता है, निश्चिंत जीवन हो जाता है उसे। कल आप जी ने देखा, एक मछुआरा अपने पुत्र मोहन का जन्मदिवस मना रहा है। घर में पूरी तैयारी है, लेकिन एक ही क्षण के बाद घर में मातम छा गया है। मोहन के अर्थात पुत्र के मित्रों ने सूचना दी है, मोहन नदी में डूब गया है। लाख बचाने के बाद भी हम उसे बचा नहीं सके। शव के पास बैठ के माता पिता मोहन के रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, लेकिन सब बेकार, मोहन वापस नहीं लौटने वाला। उनके जीवन का कुल दीपक सदा के लिए बुझ चुका हुआ है। अतएव रोने देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो होना था सो हो गया। ज्ञानी समझदार क्या कहता है, परमेश्वर की वस्तु थी, परमेश्वर ने अपने पास ले ली। अज्ञानी रोता है, छाती पीटता है, मानो परमात्मा ने कोई अन्याय अत्याचार किया है, इसकी दुहाई दे रहा है। देवियों सज्जनों, इस सब विश्वास की कमियां हैं, ये ठीक नहीं है। हमारा विश्वास इस प्रकार का अटूट होना चाहिए, परमात्मा की करनी में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, कोई अन्याय नहीं है, कोई अत्याचार नहीं है। अतएव जो कुछ उसकी परमेच्छा से हो रहा है, जो कुछ क्या होता ही सब कुछ उसकी परमेच्छा से है, सो जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे सहर्ष शिरोधार्य करना ही हमारा परम कर्तव्य बनता है। इसी में सुख शांति है, शाश्वत सुख शांति इसी में है। तनिक सोचिएगा, क्या किया है परमात्मा ने? सोच विचार करके देखें तो साधक, एक अच्छा साधक, एक बुद्धिमान साधक किस प्रकार से इस घटना को लेता है। यही ना, मेरे कर्मों का फल था, घटित हो गया। परमात्मा तो कृपा करके मेरे एक बड़े कर्म को काट रहा है, चाहे वह इस प्रकार का था, चाहे वह किसी भी प्रकार का था, कर्म काट रहा है परमात्मा। ये परमात्मा की कृपा है, ये परमात्मा की करुणा है। एक साधक जो कुछ भी दुर्घटना जीवन में घटती है, जो कुछ भी अप्रिय घटना जीवन में घटती है, उसे इसी प्रकार से लेता है। मेरा कोई कुकर्म था, वह परमात्मा मेहरबानी करके काट रहा है। सत्य भी देवी सचनों यही है। आप इसे रो रो के काट लो, छाती पीट के काट लो या सहर्ष काट लो, आप कुछ नहीं कर सकते उसके सामने। जो कुछ उसने करना था सो उसने कर दिया, और वह हमारे कर्मों से बंधा हुआ है, हमारे कर्मों के अनुसार ही किया है उसने। उसकी अपनी इच्छा स्वतंत्र नहीं है, वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से कुछ नहीं करता, वह हमारी प्रारब्ध से, हमारे कुकर्मों से, हमारे कर्मों से बंधा हुआ है। अच्छे कर्म है तो उनका फल वह अच्छा देता है, और अगर यदि बुरे कर्म है तो उनका फल बुरा ना मिले ये कभी हो नहीं सकता, उनका फल दुख देने वाला कभी ना मिले ये कभी नहीं हो सकता, ये परमात्मा का विधान नहीं है। हाँ, एक साधक के लिए वह विधान, एक भक्त के लिए वह विधान तोड़ सकता है, लेकिन वह भक्त होना चाहिए, परमात्मा को इस बात का यकीन होना चाहिए कि ये मेरा भक्त है, ये मेरे ऊपर निर्भर है, इसे मेरी क्षमा के प्रति विश्वास है, इसे अपनी साधना के प्रति विश्वास है, उसे ये विश्वास है कि यदि परमात्मा मेरे अनुकूल हो जाते हैं तो मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। जो भी साधना हम सब करते हैं किस लिए? इसलिए ना कि परमात्मा हमारे अनुकूल हो जाए, तब वह विधान की प्रवाह नहीं करता, तब वह विधान के अनुसार नहीं चलता, तब वह आपकी प्रारब्ध को भी काट देता है, या यदि आपसे प्रारब्ध कटवाता है तो उसका दुख वह स्वयं अपने शरीर पर भुगतता है, स्वयं भुगतता है, वह आपको वेदना या पीड़ा नहीं भुगतने देता। ये परमात्मा की करुणा है, किस पर बरसती है? जो परमात्मा का हो जाता है, जो अपने आप को परमात्मा को सौंप जाता है, जो निश्चिंत रहता है। परमात्मा एक ही शब्द तो कहना है ना, परमात्मा तेरे होते मुझे चिंता किस बात की, बस वह इस बात को सुन के तो वह सब कुछ संभालता है। आपकी ये आपका ये कथन बड़ा ईमानदार होना चाहिए, परमात्मा को इस पर विश्वास होना चाहिए कि जो तू कह रहा है वह ईमानदारी से कह रहा है, सत्य कह रहा है, तो देवियों वह सब कुछ अपने सिर पर लेता है। परमात्मा के कंधे बहुत बलवान हैं, वह सारे ब्रह्मांड का, अखिल ब्रह्मांड का बोझ उठाने को तैयार है। हम ही मूर्ख हैं कि हम अपना कंधा आगे कर देते हैं, दूसरा कंधा आगे कर देते हैं, हम बोझ उठाने वाले बनते हैं, तो फिर उठाइएगा और मार खाइएगा। यदि आप परमात्मा पर छोड़ देते हो तो परमात्मा सबका बोझ, एक एक प्राणी का बोझ उठाने को तैयार है, और सहर्ष उठाता है उसे, इसे उठाने में बहुत आनंद महसूस होता है। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहा हूं, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, परमात्मा का बड़प्पन देखिएगा, परमात्मा की सोच देखिएगा, वह कहता है मैं इनके लिए कुछ करके कोई इन पर एहसान नहीं कर रहा, वह तो इंसान है जिसकी सोच इस प्रकार की है, क्या बिगाड़ा था परमात्मा का हमने, हमारे साथ इस प्रकार का उन्होंने कर दिया। कोई रोग आ गया है, कोई मुकदमा आ गया है, कोई दुख आ गया है, रो रो के हम बुरा हाल कर लेते हैं, उलहने दे दे के हम बुरा हाल कर देते हैं। आदमी सोचता है कैसे साधक है, मानो जिंदगी में कोई साधना की कमाई नहीं, ये साधना शून्यता के चिन्ह है, ये कमाई नहीं अर्थात गरीबी के चिन्ह है, आध्यात्मिक दरिद्रता के चिन्ह है, आध्यात्मिक निर्धनता के चिन्ह है। एक बलवान, एक धनवान, उसे कोई फर्क इन चीजों से नहीं पड़ता, उसकी सोच बड़ी भिन्न हुआ करती है। कल की चर्चा भी ही देखिएगा साधक, शुरू होनी बहुत प्रबल है, ये चर्चा शुरू की गई थी। राजा जनक आज कहीं जाते जाते क्या देखते हैं, एक महिला जमीन पर मरी पड़ी है, उसके पास 6 महीने का बच्चा भूख से तड़प रहा है, लोग इकट्ठे हो गए हैं, अफसोस कर रहे हैं, एक शोक का वातावरण है वहां पर। राजा जनक के देखते देखते एक युवती आई है, उसके पास एक गागर है, हाथ में पकड़ी हुई है, नदी की ओर जा रही है। देखा वहां लोग इकट्ठे हैं, रुकी, और तो रो रहे हैं, और तो रो नहीं रहे तो शोकग्रस्त हैं, उदास हैं, लेकिन ये मुस्कुरा के हंस के तो नदी की ओर चली गई है। राजा जनक को इसका व्यवहार बड़ा अटपटा सा लगा, अतएव इसको फॉलो किया। नदी पर जाते जाते पूछा, बेटा सब वहां पर अफसोस कर रहे थे, ऐसी दुर्घटना घटित हुई हुई थी वहां पर, तू हंसी क्यों, क्या कारण है? सब अफसोस कर रहे थे वहां पर, तू वहां से हंसती हुई निकल गई। राजा साहब ऐसा होना था सो हो गया, अफसोस किस बात का, परमात्मा की करती पर, क्या उसने अन्याय किया है, क्या उसने गलत किया है, उसके कर्मों के अनुसार ऐसा होना था वह हो गया। पुत्र जो बच्चा जो 6 महीने का जो भूख से तड़प रहा है वह अपने कर्मों के अनुसार अपने भोग भोग रहा है। मैं रोऊं किस बात पर, मैं शोक किस बात का करूं, अफसोस किस बात का करूं। इस दैव हंसी हुई चली गई, अब मुझे रोकिएगा मत, मुझे अपनी सूरत परमात्मा में लगानी है, मैंने अभी जाके नदी में स्नान करना है। नदी में स्नान करने के बाद ये गागर देख रहे हो मेरे हाथ में, अपने पति के स्नान के लिए मुझे जल वापस ले जाना है, जाके पति को स्नान करवाना है। स्नान करवाने के बाद जैसे ही मैं किचन में जाऊंगी जाके भोजन लेने के लिए अपने पति के लिए लिए, किचन की छत मेरे ऊपर गिर जाएगी और मेरी मृत्यु हो जाएगी। अतएव राजा साहब मेरे पास समय बहुत कम है, अब मैं और बात नहीं कर सकती, मुझे अपनी सुरत परमात्मा में लगानी है मरने से पहले। राजा जनक कहते हैं मैंने ये सब बातें अपनी आंखों से घटित होती देखी। जाते जाते एक बात और कह गई राजा जनक, थोड़ी ही देर के बाद रावण के घर पुत्री पैदा होने वाली है, उसकी पुत्री का विवाह, वह अपने आप को 30 बार हां समझने वाला युवती क्या घोषणा कर रही है, रावण के घर पुत्री पैदा होने वाली है और उस पुत्री का विवाह रावण के घर के जमादार के पुत्र के साथ होगा, जाओ उसे कहो इस होनी को टाल के दिखाए। राजा जनक ने यह सब कुछ घटित होते देखा तो रावण के पास चले गए। राजा जनक ने जाके कहा रावण ऐसी ऐसी बात होने वाली है। रावण ने सुनते ही जमादार के पुत्र का पता लगाया और हुक्म दिया, पहले ब्रह्मा जी का आवाहन किया, ब्रह्मा जी का आवाहन करने के बाद उनसे पूछा क्या यह सब कुछ जो कुछ मैंने सुना है यह सत्य है, क्या तूने लिखा हुआ है। हाँ मैंने लिखा हुआ है, तेरे कर्मों के अनुसार, उस लड़की के कर्मों के अनुसार और परमात्मा की इच्छा के अनुसार लिखा हुआ है, अतएव मैं इसे बदल नहीं सकता, मैं बदल के दिखाऊंगा। रावण कहता है मैं इसे बदल के दिखाऊंगा, ठीक है तेरी मर्जी, पर जो कुछ मैंने लिखना था लिख दिया, मैं उसको बदल नहीं सकता, क्यों, मैंने परमात्मा की इच्छा के अनुसार लिखा है और उसकी परमिच्छा सर्वोपरि है, उसकी परमिच्छा को स्वाय उसके और कोई बदल नहीं सकता, कम से कम मैं नहीं बदल सकता। तू ऐसा क्लेम करता है कि मैं बदल के दिखाऊंगा, दिखा बदल के, पुष्टि हो गई। उस सफाई कर्मचारी शब्द चंडाल लिखा हुआ है ऐसा लक्षणों, मैं सफाई कर्मचारी कह रहा हूं, जमादार के पुत्र को उसी वक्त हुक्म दिया इसके टुकड़े टुकड़े करके तो इसको कहीं नदी में दूर फेंक दिया जाए। कोलाहल मच गया, प्रजा ने कहा एक निरपराधी को क्यों मारा जा रहा है, फॉर व्हाट, क्या अपराध किया है इसने। तो रावण रुका, कहा ठीक है, दोनों पांव की 4-4 उंगलियां इसकी काट के इसे निर्जन जंगल में फेंक दिया जाए, ठीक है। ऐसा हो गया, परमेश्वर की ऐसी करनी देखिएगा। एक साधु महात्मा उधर से निकले हैं, उस बिलखते बच्चे को उठा लिया है, मानो खून निकल रहा होगा दोनों पांव से, 4-4 उंगलियां दोनों पांव की कट दिए हैं, उसे निर्जन जंगल में फेंक दिया है, अपने आप मर जाएगा, चल नहीं सकेगा, मर जाएगा अपने आप। इसी आशय से रावण ने वहां फेंकवा दिया, जिसको परमात्मा रखे उसे कौन मार सकता है, जिसको परमात्मा बनाना चाहे उसे कौन बिगाड़ सकता है उसका कोई कुछ, जिसको देना चाहे परमात्मा उसे कौन छीन सकता है, कोई कोई नहीं छीन सकता। साधु महात्मा अपने आश्रम में ले गए हैं, जाके इसका पालन पोषण शुरू हो गया है, रावण के घर पुत्री पैदा हो गई है। विधात्री विधाता लेख लिखने के लिए आ गए, रावण ने रुक खबरदार जो मैं कहता हूं मैं लिखो, नहीं रावण मैं ऐसा नहीं कर सकूंगी, जो विधाता का विधान है, जो परमात्मा की इच्छा है, इस बच्ची के कर्मों के अनुसार, तेरे कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार, परमात्मा की परमिच्छा के अनुसार जो कलम से लिखा जाएगा वही लिखा जाएगा, उनके अनुसार, तेरे अनुसार नहीं, तू लिख मैं बदल के दिखाऊंगा, वह तेरी मर्जी, पर मैं अभी लिखूंगी जो परमात्मा की इच्छा है। तेरी पुत्री सुशील होगी, तेरी पुत्री सुंदर होगी, तेरी पुत्री पतिव्रता होगी, शीलवान होगी, अनेक प्रकार के गुण होंगे उसमें, लेकिन उसका विवाह तेरे घर के जमादार के पुत्र के साथ होगा, ये निश्चय। सत्क्षण पुत्री बड़ी हो गई, विवाह योग्य हो गई, उधर रहे भी बड़ा हो गया है, युवक बहुत सुंदर, संत महात्मा ने एक दिन उसे घूमते फिरते अपने पास बैठे हुए बिठा के देखा, बेटा तेरे मस्तक पर तो राज्य सुख लिखा है, तू यहां कैसे है? संत महात्मा को कोई बात थनकी, तेरे मस्तक पर राज्य सुख लिखा हुआ है, अमुक जगह का राजा बन चुका हुआ है। खुश न हुई, जो सबसे पहले कहीं मिलेगा उसको राजा बना दिया जाएगा, ये राजा बन गया। ये लड़का जमादार का लड़का, रावण के जमादार का लड़का, राज्याभिषेक हो गया है, अमुक स्थान का अमुक राज्य का राजा बन गया है। रावण के दूत लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहे, पसंद आ गया। रावण को जाके सूचना थी, ऐसा होनहार बालक हमने आज तक नहीं देखा, ऐसा होनहार राजा हमने ऐसा कभी नहीं देखा। विवाह हो गया, दोनों का विवाह हो गया। रावण उच्च स्वर से, ओ ब्रह्मा, ओ विधाता, देख मैंने तेरा विधान डाल दिया है, तेरा विधान नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। ब्रह्मा कहते हैं, नहीं रावण, तूने वही किया है जो मैंने लिखा हुआ था, ये वही लड़का है जिसकी उंगलियां काट के छोटे होते तूने जंगल में फेंक दिया था, देख उसके पांव चार चार उंगलियां दोनों पांव की कटी हुई हैं, ये वही पुत्र है। होनी देवी सज्जनों, परमात्मा की पर इच्छा प्रबल तप है। जारी रखेंगे इस चर्चा को कल, आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। समझदार बनिएगा, दुख अपने कर्मों का फल है, दुख परमात्मा नहीं देता, परमात्मा दुख देना जानता ही नहीं है, परमात्मा के शब्दकोश में ये दुख शब्द है ही नहीं, परमात्मा सिर्फ प्रसाद देता है, आप उसे दुख मानो या जो मर्जी आपकी इच्छा है, जो उसे शब्द देना चाहो मर्जी दो, लेकिन वह उसके घर से जो कुछ मिलता है उसे प्रसाद कहा जाता है और परमात्मा प्रसाद ही देता है।